हमने फैजान और शेखू के साथ गर्मियों की छुट्टी का प्लान बना लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर अम्मी ने सब चौपट कर दिया और हमारे लाख मना करने के बावजूद हमें अपने साथ हमारी ननिहाल मेरठ ले गई। हमारा बिल्कुल भी फैजाबाद छोड़ने का दिल नहीं था, लेकिन अम्मी के आगे अब्बू की नहीं चलती थी तो हम किस खेत की मूली थे यार। मेरठ में नानू का घर ईदगाह के पास पुराने मोहल्ले में था, जहां कई घरों की छत एक दूसरे से मिलती थी, और ये चीज हमारे लिए बड़ी मुफीद थी, क्योंकि दोपहर में जब सब सो जाते थे तब हम और इमरान हमारे मामू जैद भाई जो हमसे थोड़े ही छोटे थे उनके साथ मिलकर हम छत पर पहुंच जाते, बीच में एक और छत लांघते और फिर मिर्जा साहब की छत पर पहुंच जाते। मिर्जा साहब की छत बहुत बड़ी थी और कोने की भी थी, जहां से पतंगबाजी बहुत बढ़िया तरीके से होती थी। फिर हम दोनों दबा कर अपने फैजाबादी मंजे से पेंच लाते और सबकी पतंग काटते, और हाँ उन्हीं की छत पर हम उनकी टंकी के नीचे अपनी पतंग और लटाई भी छुपा दिया करते थे। इस बार भी हमने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार मिर्जा साहब की छत छक सफेद हो रखी थी। तभी इम्मू ने बताया मिर्जा साहब ने अपना घर किसी को बेच दिया है। खैर हमें इस बात से क्या फर्क पड़ता था, हमें तो पतंग उड़ाने से मतलब था। अगली दोपहर बड़ी खाला ने जबरदस्त मटन स्टू बनाया था, मैंने और इम्मू ने दबा कर खाया और बरामदे में सीढ़ियों के पास लगे तखत पर सोने का नाटक करके लेट गए। थोड़ी देर बाद सब लोग अंदर सोने चले गए और हमने मौका पाया और छत पर खिसक लिए। छत पर पहुंचकर हर बार की तरह हमने सबसे पहले मुआयना किया कि बगल वाली छत खाली है या नहीं, क्योंकि जिस छत को पार करके हमें मिर्जा साहब की छत पर जाना होता था वो छत रेहाना चाची की थी, जिनकी मोहल्ले में किसी से ना बनती थी। कसम से चुड़ैल जैसी दिखती थी वो। पता है पिछली मर्तबा नानू का पजामा उड़कर उनकी छत पर जा गिरा, हमने कहा जाकर उठा लेते हैं, और हमने अपनी छत की मुंडेर टापी और रेहाना चाची की छत पर नानू का पजामा उठाया। वहीं पास में एक खटिया खड़ी हुई थी और हमें क्या पता वो चुड़ैल खटिया के पीछे छुपी हुई थी। जैसे ही हम पजामा लेकर दो कदम ही बढ़े थे उसने पीछे से हमारा गला दबोच लिया और चोर चोर कहकर इतना शोर मचाया कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। किसी तरह से जान बची हमारी। नानी से भी हमें बहुत डांट पड़ी और उन्होंने सख्त हिदायत दी कि चाहे कुछ हो जाए आइंदा रेहाना की छत पर मत जाना। लेकिन हम जैसे फितरती कहां बाज आने वाले थे, उनकी छत लांघ कर ही तो मिर्जा साहब की छत तक पहुंचते थे हम। अब जब हमने देखा रेहाना चाची की छत पर कोई नहीं है तो मैं और अम्मू उनकी छत पर धीरे से कूद पड़े और दबे पांव मिर्जा साहब की छत की मुंडेर तक पहुंच गए। तभी हमने देखा मिर्जा साहब की छत पर कुछ कपड़े सूख रहे थे, कुछ रंग बिरंगी चुन्नियां सी थी। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई थी और हम दीवार के पीछे छुप गए और एक कोने से झांकने लगे। कसम खुदा की जो मंजर हमने देखा तो बस देखते ही रह गए। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की दीवार के साथ कोने में बैठे एक रुमाल पर कुछ कढ़ाई कर रही थी, फिरोजी दुपट्टा और हाथों में हरी हरी चूड़ियां, माथे पर लटकती कुछ घुंघराली लटे और उन लटों के झरोखों से नजर आती बड़ी बड़ी गहरी काली आंखें। वो अपनी ही धुन में कढ़ाई करने में मशगूल थी और हां उसके गुलाबी होठों के ऊपर वो काला तिल, ऐसा लग रहा था बस उसी को देखते रहे। काफी देर तक हम उसी जगह पर छुपे हुए उसको देखते रहे। अचानक से वो थोड़ा हंसी और बिना हमारी तरफ देखे वो बोली, हमें ही देखते रहेंगे तो पतंग कब उड़ाएंगे आप? ये सुनते ही हम सकपका गए और वो धीरे से हमारी तरफ मुखातिब होते हुए बोली, आ जाइए, हम आपसे ही बातें कर रहे हैं। उस रात हमें एक पल के लिए नींद नहीं आई। हर वक्त उसकी आवाज हमारे कानों में गूंजती रही और उसका हसीन चेहरा हमें सोने नहीं देता था। अगली दोपहर हम वक्त से आधा घंटे पहले ही उसकी छत पर पहुंच गए। पतंग उड़ाने लगी लेकिन काफी देर तक वो नहीं आई। सच कहें हमें पतंग उड़ाने में जरा भी मजा नहीं आ रहा था। शाम ढलने को आ गई लेकिन वो छत पर नहीं आई। तभी इम्मू दौड़ता हुआ आया और बोला, भाईजान सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो घर। वो रात भी बहुत मुश्किल से कटी। अगले दिन तो जैसे भूख प्यास सब बंद हो गई थी। बस बरामदे में तख्त पर लेटे हुए उसी को याद कर रहे थे और मन ही मन दुआ कर रहे थे, हे अल्लाह मियां, एक बार और, बस एक बार उस लड़की से मुलाकात करवा दो। और पता है हमारी दुआ कबूल हो गई। अगले दिन हम जैसे ही उसकी छत पर पहुंचे तो देखा सामने से वो भी आ रही थी और हमें देखते ही वो मुस्कुराते हुए धीरे से सलाम करते हुए बोली, सलाम पेश करती हूँ जनाब। फिर क्या था, हमने भी मौके का फायदा उठाया और सलाम करते हुए हमने कहा, आपसे मिलकर यूं लगा जैसे जिंदगी मिल गई। इस बात पर वो शर्माते हुए मुस्कुराती और हमने बिना वक्त गवाए पूछ लिया, मोहतरमा आपका इसमें शरीफ, वैसे बंदे को मंसूर रिजवी कहते हैं। और वो धीरे से बोली, जी हम निखत सरीन है। अब तो साहब दो दो पेच लड़ रहे थे, एक पतंगबाजी का और एक इश्कबाजी का। और फिर वक्त इतनी तेजी से गुजर गया इसका हमें इल्म ही नहीं था। फिर एक सुबह अम्मी ने कहा, मंसूर मामू के साथ जाकर गजक और रेबड़ियां ले आओ, कुछ याद भी है तुम्हें, कल हमें फैजाबाद वापस जाना है। कहां हम फैजाबाद से आना नहीं चाहते थे और कहां आलम यह था हम फैजाबाद जाना नहीं चाहते थे। दोपहर को हम जब छत पर पहुंचे तो हमें पता था शायद निखत से हमारी ये आखिरी मुलाकात होगी। निखत पहले से ही छत पर मौजूद थी और उसी रुमाल पर रेशम के धागों से कढ़ाई कर रही थी। और हमने बड़ी हसरत से कहा, क्या बात है, बड़ी शिद्दत से आप इस रुमाल पर कारीगरी कर रही हैं, लगता है वो शख्स कोई खास है जिसके लिए आप ये रुमाल बना रही हैं। और निखत ने अपनी गहरी काली पलकें उठाते हुए हमें देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वजह फरमाया, ये शख्स हमारे लिए बहुत खास है। हम समझ गए थे निखत ये रुमाल मंसूर मियां तुम्हारे लिए बना रही है। और फिर हमने तपाक से कहा, अगर हम गलत नहीं है तो वो शख्स आपके सामने खड़ा है, क्यों सही कहा ना हमने। लेकिन उसने धीरे से नामे सर हिलाते हुए कहा, माफ कीजिएगा वो आप नहीं है, ये रुमाल तो हम अपनी जान के लिए बना रहे हैं जिससे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये सुनते ही एक पल को तो हमें लगा ये झूठ है, ऐसा लग रहा था जैसे हमने पिघला हुआ सीसा पी लिया हो। तभी निखत बोली, क्या हुआ मियां, क्या सोच रहे हैं आप, हमारा दिल टूट चुका था और हमसे वहां एक पल नहीं रुका जा रहा था। और हमने कहा, हम आपको अलविदा कहने आए थे, कल सुबह की ट्रेन से हम फैजाबाद वापस जा रहे हैं। और यह कहकर हम पलटे और अपनी छत की तरफ चल दिए। तभी निखत पीछे से बोली, अरे मियां ऐसे कैसे जा रहे हैं, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे सुनिए तो, अरे क्या हुआ आपको, आप कहां जा रहे हैं। लेकिन हम एक बार जो पलटे तो दोबारा मुड़ के वापस नहीं देखा। हम क्या, हमारी जगह कोई भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। सच कहते हैं औरत जात की फितरत ना कोई समझा है ना कभी समझेगा। फैजाबाद लौटकर निखत के जख्म ने हमें तोड़ दिया था लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, पूरा दिल और दिमाग पढ़ाई में झोंक दिया और UPSTF में हमारा सिलेक्शन हो गया। और खाला की लड़की रेशमा से देखा भी। ट्रेनिंग के बाद हमारी पहली पोस्टिंग इलाहाबाद हुई और कुछ महीनों बाद एक ऑपरेशन के लिए हमें सेलेक्ट किया गया। इंडक्शन वाले दिन जब बाकी एसटीएफ मेंबर से हमारा इंटरव्यू हुआ तो उसमें से एक निखत सरीन भी थी, जिन्हें देखकर हम सन्न रह गए। मन करता था पूछ लें, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? और जब मौका मिला तो इससे पहले हम कुछ पूछते, निखत ने हमसे ही पूछ लिया।
हमसे ऐसी क्या खता हो गई थी जो आप हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए?
यह सुनते ही हमारा खून खौल उठा। एक तो चोरी ऊपर से सीना सोती, और हमने कहा,
खता?
आपसे कैसे खता हो सकती है मोहतरमा? खता तो हमारी थी कि हमने आपको अपना दिल दे दिया, आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे, लेकिन आपकी जान तो कोई और ही निकला ना। यह सुनते ही निखत की आंखें नम हो गई और उसने धीरे से हमारा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा,
बस इतनी सी बात पर मोहब्बत से यकीन उठ गया मंसूर? अरे एक बार पूछ तो लिया होता हमारी जान कौन थी। पता है, हमने वो रुमाल अपनी अम्मी जान के लिए बनाया था।
तो आप सुन रहे थे मंटो पशुपतिनाथ की अधूरी प्रेम कहानियां। फिर होती है मुलाकात एक नई कहानी के साथ।